शांति। आज का अभी का सत्र जो है राजयोग का मुख्य आधार एवं विधि क्या है। राजयोग माना ही आत्मा और परमात्मा का संबंध, तो ये संबंध सहज और सरल कैसे हो, क्योंकि अब तक का अनुभव तो यही कहता है कि भगवान में मन लगाना चाहते हैं, भगवान को याद करना चाहते हैं, लेकिन जैसे ही भगवान की याद में बैठते हैं कि मन भटक जाता है। कहां भटकता है, कहां जाता है हमारा मन? कभी उसका पीछा करके देखे कि कहां गया, तो देखा जाता कि कोई न कोई इंद्रियों की चंचलता के पीछे ही मन जाता है। कभी किसी से बातचीत करते हुए कोई बात मुख से निकल जाती है जो बात हमें उस व्यक्ति को कहनी नहीं चाहिए थी, निकल गई। फिर कर्म में व्यस्त हो गए तो भूल गई बात सारी, लेकिन जैसे ही शांत चित होकर के भगवान को याद करने बैठते हैं, उसी समय वो व्यक्ति का चेहरा सामने आता है, वो सारी बात सामने आती है, और उस समय महसूस होता है कि अरे ये बात मुझे उसको कहनी तो नहीं चाहिए थी, अब बहुत बड़ी गलतफहमी हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, पता नहीं वो क्या सोचेगा। बैठे हैं भगवान के सामने, मन चला गया, कहां गया? इस मुख ने जो चंचलता की उसके पीछे गया। या कानों द्वारा कोई बात सुन लेते हैं, सुनते समय साधारण रीति से सुन लेते हैं, फिर अपने कर्म व्यवहार में व्यस्त हो गए तो भूल गए, लेकिन जैसे ही शांत चित होकर के भगवान के सामने बैठते हैं, उसी वक्त वो सारी बात याद आती है कि फलाने ने मुझे ये बात कही, उसका भाव क्या था? जरूर ये भाव होगा, ऐसा होगा, जरूर ऐसा होगा, और अनेक प्रकार के अनुमान को जोड़ते हुए ऐसे भाव और भावना को निकालने लगते हैं कि मन चला गया, कहां गया? जो कानों द्वारा चंचलता हुई उसी के पीछे मन गया। तो मनुष्य का मन का भटकने का जो द्वार है, कोई न कोई इंद्रियों की चंचलता है। राजयोग माना ही सर्वप्रथम अपनी इंद्रियों पर राज्य प्राप्त करना, और जिसने इंद्रियों पर राज्य प्राप्त किया है वो मन को भी सहज जीत सकता है, मन को भी अनुशासन में ला सकता है। स्वानुशासन, सेल्फ डिसिप्लिन, यही राजयोग हमें सिखाता है, और उसी से ही फिर हम मन के द्वारा सुंदर अनुभव कर सकते हैं। लेकिन इस योग को हम डिवाइड करें तो तीन स्टेप्स में डिवाइड कर सकते हैं। इसको कहते ही है एक यात्रा, मन की यात्रा है, एक आध्यात्मिक यात्रा है। मनुष्य के मन के लिए कोई बंधन नहीं होता है, मन कहां भी जा सकता है। यहां बैठे बैठे अपने घर पहुंच जाएंगे, कितना समय लगता है, कोई मेहनत लगती है, कोई मेहनत नहीं, कोई समय नहीं। यहां बैठे बैठे लंदन अमेरिका तक पहुंच सकते हैं, कोई मेहनत नहीं। यहां बैठे बैठे 25 साल पीछे जा सकता है, कोई घटना 25 साल पीछे हुई हो, मन को याद करने में कोई तकलीफ होती है? नहीं। एक सेकंड में 25 साल पीछे चला जाएगा, 5 साल आगे चला जाएगा कि हमें अब 5 साल के अंदर ये करना है, सारा प्लानिंग करता है इंसान, तो मन के लिए समय और स्थान बंधन नहीं बन सकता है। मन इतना तीव्र वेगी है, कहां भी चला जाता है। तो यही मन की जो रुचि है कि उसको घूमना अच्छा लगता है, उसी को ही हम राजयोग के अंदर आधार बना देते हैं, ताकि मन को सहज एक यात्रा पर ले जा सकते हैं। और ये यात्रा के तीन कदम, पहला कदम है जिसको हम कहते हैं भीतर की यात्रा, अंतर की यात्रा। आत्मा के ज्ञान के आधार से पहला कदम है आत्मचिंतन, क्योंकि मन के पास वो शक्ति है कि मन विचारों की शक्ति के माध्यम से जो अनुभव करना चाहे वो कर सकता है। इसीलिए कहा जाता है जैसा सोचोगे वैसा बनोगे, एज यू थिंक सो यू बिकम, जैसा चिंतन वैसा जीवन। जिस क्वालिटी का चिंतन हम करते हैं वैसा अनुभव होता है। कोई डर का चिंतन करने लगे तो उसको डर की अनुभूति होने लगती है। इसी प्रकार कोई ऐसा चिंतन करे उदासी भरा, तो व्यक्ति डिप्रेशन का अनुभव कर सकता है, नर्वसनेस का अनुभव कर सकता है। अगर नर्वसनेस का, डर का अनुभव कर सकते हैं, तो क्या शांति, प्रेम, आनंद का अनुभव नहीं कर सकते हैं? अवश्य कर सकते हैं, लेकिन अपने चिंतन को वो दिशा देनी पड़ती है। और इसलिए आत्मचिंतन, आत्मा के जो सात गुणों के विषय में सुना कि आत्मा की वास्तविकता क्या है, उस आत्मा की वास्तविकता का यथार्थ अनुभव करना अपने चिंतन के द्वारा। तो ये है प्रथम कदम कि धीरे धीरे वो गुणों का हम अनुभव करते जाते हैं और अपने आसपास एक ऐसा प्रभा मंडल क्रिएट करते हैं, ऐसा एक ओरा क्रिएट करते हैं कि जो आत्मा की वास्तविकता है। यही आत्मस्थिति कही गई है गीता के अंदर कि हे अर्जुन, सर्वप्रथम आत्मस्थिति में स्थित हो जाओ। क्योंकि व्यक्ति जिसकी याद में बैठता है उसी की याद उसको सहज और स्वाभाविक आनी है। आज एक व्यक्ति है, जब अपने आप को पति समझता है तो उसको कौन याद आएगा? उसको अपनी पत्नी याद आएगी। जिस वक्त अपने आप को पिता समझता है उस वक्त कौन याद आता है? अपने बच्चे याद आते हैं। जिस वक्त अपने आप को बच्चा समझता है उस वक्त उसको किसकी याद आती है? अपने माता पिता की याद आती है। उसके लिए उसको रटना नहीं पड़ता है कि मैं पति हूं, मैं पिता हूं या मैं बच्चा हूं। नहीं, एक स्वाभाविक स्मृति के स्विच ऑन हो जाने से, उसी संबंध से जो व्यक्ति सोच रहा होता है वो संबंधों की याद उसको सहज और स्वाभाविक आ जाती है। ठीक इसी प्रकार जब अपने आप को आत्मनिश्चय करके बैठता है कि मैं ये देह नहीं, मैं एक आत्मा हूं, और आत्मा की जो वास्तविकता है उसमें स्थित कर देता है मन को, तो उससे उसको सहज और स्वाभाविक परमात्मा की ही याद आती है। जिस प्रकार दो वायरों का कनेक्शन करना हो तो दोनों का रबर इंसुलेशन उतारना पड़ता है, तब करंट पास होती है। अगर एक का रबर उतारा गया और एक का रबर नहीं उतारा और वायर को जोड़ दिया तो करंट पास होगी। ऐसे परमात्मा को कोई आवरण नहीं है और हम आत्माओं को सबसे बड़ा आवरण ये देह का है, देह के अभिमान का है, देह के अनेक विभिन्न संबंधों का है। वो बिना आवरण का, हम आवरण वाले माना रबर लगे हुए, अब जोड़ो तार को तो करंट मिलेगी कभी नहीं मिलेगी। उसके लिए स्वयं को आत्म स्थिति में स्थित करना माना देह और देह के संबंधों में जो अनेक आवरण है उसको हम सहज रूप से हटा देते हैं, और आत्म स्थिति में स्थित किया तो परमात्मा की याद ही स्वाभाविक रीति से आनी है। उसके लिए कोई रटना नहीं है कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, नहीं, वो स्मृति में स्थित होना है। दूसरा कदम इस यात्रा का है कि परमधाम की यात्रा है, पांच तत्वों की दुनिया से पार, उस परमधाम में जहां परमात्मा निवास करते हैं वहां अपने मन को ले चलना है, और उस परमात्मा के सानिध्य में स्वयं को स्थित करना है, और मांगना नहीं है कि हे प्रभु मुझे शांति दो, मुझे शक्ति दो, मुझे आनंद दो, नहीं। जैसे बाहर धूप में खड़े रहो तो सूर्य से मांगते नहीं कि तेरी गर्माइश मुझे दे, या समुद्र के पास खड़े रहकर समुद्र से मांगते नहीं है कि तेरी शीतल हवा मुझे दे। आप खड़े रहो, मिलेगी, थोड़ी देर में शरीर में गर्माइश आ जाएगी या हवा लगने लगेगी, महसूसता होगी। ठीक इसी प्रकार परमात्मा के सानिध्य में भी जब हम मन को ले जाते हैं तो ईश्वर से मांगते नहीं है लेकिन अपने आप वो शक्ति हमें प्राप्त होने लगती है। कई बार कई लोग पूछते हैं कि भगवान से हमें शक्ति मिल रही है उसका प्रमाण क्या, हमें कैसे पता चले कि हमें ईश्वर से शक्ति मिल रही है, क्या कुछ दिखाई देने लगेगा? नहीं, कुछ दिखाई नहीं देता है। मेडिटेशन के अंदर कोई साक्षात्कार वाली बात नहीं है, लेकिन प्रमाण अवश्य है, हमें पता चलता है कि ईश्वर से हमें शक्ति मिल रही है। कैसे? एक साधारण सा उदाहरण मैं आपको दूं कि आज की दुनिया के अंदर रिचार्जेबल बैटरीज आती है, वो बैटरी को यूज करो, डिस्चार्ज हो जाती है, फिर उसको चार्जर में रखना पड़ता है, चार्जर में रख देने से चार्ज नहीं होती है, एक स्रोत के साथ उसको जोड़ना पड़ता है, और वहां से जो करंट आती है उसी से बैटरी चार्ज हो जाती है। अब ये डिस्चार्ज और रिचार्ज कैसे होती है? सिंपल साइंटिफिक लॉजिक यही कहता है कि उस बैटरी के भीतर जो केमिकल कंपोनेंट्स है, तो जैसे ही हमने यूज किया वो केमिकल कंपोनेंट्स डिसऑर्गेनाइज्ड हो जाते, अस्त व्यस्त हो जाते हैं, और जब संपूर्ण अस्त व्यस्त हो जाते हैं तो कहते हैं डिस्चार्ज हो गई। फिर चार्जर में जब रखा, उस स्रोत के साथ जोड़ा, जो करंट मिली वो दिखाई नहीं देती है, हाथ लगाओ तो पता चलता है कि करंट आ रहा है, लेकिन उस करंट से उस बैटरी के अंदर जो केमिकल कंपोनेंट्स है वो सुव्यवस्थित होने लगते हैं, और जब संपूर्ण सुव्यवस्थित रीऑर्गेनाइज्ड हो जाते हैं तो कहते हैं रिचार्ज हो गई, 6 घंटे में 8 घंटे में जैसी उसकी कैपेसिटी है। ठीक इसी प्रकार मेडिटेशन ये चार्जर है, और आज आत्मा की बैटरी भी कंप्लीट डिस्चार्ज हो गई है। कैसे पता चलता है कि हमारी बैटरी डिस्चार्ज हो गई है? हमारे भीतर की मैकेनिज्म भी अस्त व्यस्त हो गई है। कभी कभी हम बहुत अच्छा सोचते हैं, बहुत सुंदर विचार हमारे मन के अंदर आते हैं, लेकिन जब उसको व्यक्त करने जाते हैं तो कुछ और ही निकल जाता है। बाद में महसूस होता है कि अरे मेरा तो भाव भी नहीं था ऐसा। तब हमें क्षमा मांगनी पड़ती है और कहना पड़ता है माफ करना, आप मेरे मन के भाव को समझने का प्रयत्न करना, मेरे शब्दों के तरफ ध्यान नहीं देना। यानी स्पष्ट शब्द में हम कहना चाहते हैं कि मेरे मन के भाव कुछ और है, मेरी वाणी कुछ और है, दोनों के बीच में कोई तालमेल नहीं है, इसलिए प्लीज आप मुझे मिसअंडरस्टैंड नहीं करना। तो सोचते कुछ और है, बोलते कुछ और है, और प्रैक्टिकल कर्म में कुछ और हो जाता है। फिर कहते पता नहीं, सोचा भी नहीं था ये कैसे हो गया। यानी सोचा कुछ और है, बोला कुछ और है, और प्रैक्टिकल किया कुछ और है। तो कहां सुव्यवस्थितता है, ऑर्गेनाइजेशन है, टोटल डिसऑर्गेनाइजेशन है। विचार अलग दिशा में है, भावनाएं अलग दिशा में है, मनोवृत्ति कुछ और है, दृष्टि कुछ और है, वाणी कुछ और है, व्यवहार कुछ और है, कर्म कुछ और है। आज एक भी सिस्टम हमारी एक दूसरे के साथ सुसंवादिता में चलती है, सब अलग अलग दिशाओं में है। इसीलिए तो व्यक्ति के भीतर फ्रस्ट्रेशन बढ़ रहा है, क्योंकि वो अपनी ही इनर मैकेनिज्म को सुव्यवस्थित नहीं कर पा रहा है कि जो सोचे वही बोले, वही फील करे, वही उसकी मनोवृत्ति हो, वही उसकी दृष्टि हो, वही उसका कर्म हो, वही उसका व्यवहार हो। वो चाहता ये है कि सुव्यवस्थितता हो, लेकिन क्योंकि आत्मा की बैटरी डिस्चार्ज हो गई है, इसलिए सब अस्त व्यस्त हो गया है, जीवन ही अस्त व्यस्त हो गया है। व्यक्ति कई बार क्या सोचता है और जब कर नहीं पाता है तो कितना दुखी होता है। ये दुख उसको क्यों होता है? क्योंकि जो सोचा हुआ है वो कर नहीं पा रहा। इसीलिए कहने का भावार्थ मेडिटेशन ये चार्जर है, लेकिन उसमें बैठ करके हमें भी अपने मन और बुद्धि को उस परम स्रोत परमात्मा के साथ जोड़ना पड़ेगा। ये दो पिन है, मन और बुद्धि, ये दो पिन है जिसको जोड़ना है, और वहां से जो करंट मिलती है वो दिखाई नहीं पड़ती है, लेकिन उससे हमारे भीतर सुव्यवस्थितता आने लगती है। धीरे धीरे एक परिवर्तन महसूस होने लगता है, और वो परिवर्तन खुद को भी महसूस होता है, हमारे आसपास के लोगों को भी महसूस होने लगता है, कि परिवार के लोग भी कहने लगते हैं कि जब से ये मेडिटेशन करता है इसके अंदर पहुंचे। पहले तो वो बात बात में गुस्सा करता था, अभी वो इतना जल्दी गुस्से में नहीं आता है। तो पहले व्यक्ति गुस्सा करता था, गुस्सा एक कमजोरी है ना, और उस कमजोरी के वश था, क्योंकि आत्मा की बैटरी डिस्चार्ज थी, तो अंदर में एक कमजोरी क्या अनेक कमजोरियां आ गई थी, गुस्सा, ईर्ष्या, द्वेष, कई प्रकार की बुराइयां अंदर में आ गई थी, कई प्रकार की कमजोरियों के वश हो गए थे, क्योंकि बैटरी डिस्चार्ज थी। अब जबकि बैटरी धीरे धीरे चार्ज हो रही है, तो वो कमजोरियां दूर हो रही है। जैसे व्यक्ति के शरीर में अगर कमजोरी आ जाए तो हिलता है, हाथ पैर हिलते हैं, कांपता है, लेकिन शक्ति आने लगती है तो हिलेगा नहीं, फिर सशक्त होने लगेगा, अपने पैरों पर खड़ा होता है, चलता है, किसी आधार के बिना अपने आप चलता है, तो कहेंगे हाँ उसके अंदर शक्ति आई। तो ये परिवर्तन हमें स्पष्ट करता है कि व्यक्ति के अंदर शारीरिक शक्ति आई। इसी तरह मन के अंदर भी जब शक्ति आने लगती है तो हमारी कमजोरियां दूर होने लगती है। तो ये परिवर्तन जो दिखाई देने लगता है, ये परिवर्तन से सिद्ध होता है कि शक्ति मिली, नहीं तो ये परिवर्तन नहीं होता था। हाँ, अगर व्यक्ति और बुरा बन जाए और खराब हो जाए तो समझना चाहिए कनेक्शन नहीं हुआ है, गड़बड़ है उस कनेक्शन के अंदर। तो कनेक्शन सही है, परमात्मा से शक्ति मिल रही है, उसका प्रमाण एक परिवर्तन कि जो व्यक्ति सोचता है वही कर सकता है, वही वो बोलता है, वही उसकी भावनाएं होती, वही उसका व्यवहार होता है, वही उसका कर्म होता है, ये प्रमाण है। और उसके बाद तीसरा कदम है इस यात्रा का कि जो शक्ति उसमें आई है वो शक्ति प्रवाहित होती है, अनेकों तक वो प्रवाह पहुंचता है और दूसरे भी महसूस करते हैं कि हाँ उसके अंदर ये परिवर्तन आया है, हम साक्षी है, पहले ये कैसा था अभी ये कैसा हो गया है। तो ये परिवर्तन नित्य रहने लगता है, प्रवाहित होता है और दूसरे को भी महसूसता आने लगती है, उसका व्यक्तित्व बदलने लगता है, वो एक बेहतर व्यक्ति इंसान बनने लगता है। तो ये प्रमाण है कि वो शक्ति उसमें आई है। मेडिटेशन करने में शांति की शक्ति प्राप्त होती है। अब शांति की शक्ति प्राप्त हुई है तो वो रहती है, प्रवाहित होती है हमारे व्यवहार द्वारा, हमारे कर्म द्वारा, हमारे जीवन द्वारा। इसीलिए हम कहते हैं मेडिटेशन इज द वे ऑफ लाइफ। खाली 5 मिनट साइलेंस में बैठ गए उसको मेडिटेशन नहीं कहते। मेडिटेशन अगर सचमुच हमने किया, उसमें वो शक्ति को प्राप्त किया, तो वो हमारे जीवन में प्रवाहित होनी ही चाहिए। अगर वो प्रवाहित नहीं हुई तो मेडिटेशन नहीं किया, टाइम वेस्ट कर रहा है ना, क्योंकि उसको शक्ति नहीं मिल रही है। मेडिटेशन से उठने के बाद कोई तुरंत गुस्सा करने लगे तो दूसरे देखने वाले भी क्या कहेंगे, तुमने मेडिटेशन क्या किया, इसका मतलब तेरे मन के अंदर तो गुस्सा ही चल रहा था, वो मेडिटेशन हुआ ही नहीं। लेकिन मेडिटेशन में अगर मुझे शांति प्राप्त हुई तो वो शांति मेडिटेशन के बाद भी कुछ समय तक उसका इफेक्ट दिखाई देता है, वो प्रवाह दिखाई देता है और वो अनेकों के साथ उस प्रवाह को शेयर करता है। बैटरी चार्ज करने के दो तरीके होते हैं। पहला तरीका, स्रोत के साथ जोड़ो और शक्ति भरो, है ना। दूसरा तरीका, जैसे गाड़ी की बैटरी है, गाड़ी चलती रहेगी तो बैटरी चार्ज होती रहेगी, गाड़ी को खड़ा कर दिया, महीना दो महीना चलाओ ही नहीं तो बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है। ठीक इसी प्रकार हमारी बैटरी भी चार्ज हुई है और उसको चालू रखना है, चार्जिंग चलती रहे तो उसको जीवन में, कर्म में, व्यवहार में, संबंधों में प्रवाहित होने दो। जितना इसको बांटेंगे उतना बढ़ेगा, बैटरी चार्ज होती रहेगी। लेकिन अगर उसको बांटना बंद कर दिया, प्रेम को बांटना बंद कर दिया, शांति को बांटना बंद कर दिया, तो क्या होगा, बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी। इसलिए मेडिटेशन में बैटरी चार्ज करने के ये दो तरीके हैं। पहले उस स्रोत के साथ जोड़ करके अपनी बैटरी को भरो और दूसरा उसको चलाते रहो अपने जीवन के अंदर, अपने व्यवहार में, अपने संबंधों में। मेडिटेशन को सिंपल शब्द में अगर कहे तो ये टेलीपैथिक कनेक्शन है। टेलीपैथिक कनेक्शन, जैसे आप किसी को याद करो, थोड़ी देर के अंदर वो व्यक्ति का फोन आ जाए तो क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, अरे अभी आपको ही याद कर रहे थे और आपका फोन आ गया। अगर उस व्यक्ति से पूछो कि भाई आपने कैसे फोन किया तो कहेंगे बस आपकी याद आ गई, कोई खास काम नहीं था। और उस वक्त इतनी खुशी होती है कि देखो हमने उसको याद किया और उसने तुरंत एक प्रतिउत्तर दे दिया कि तुरंत उसका फोन रिटर्न में आ गया, कितनी खुशी होती है। लेकिन ये अनुभव हमेशा नहीं होता है, कभी कभी किसी किसी के साथ हो जाता है। लेकिन कब होता है कि जहां वो दोनों व्यक्ति की मेंटल फ्रीक्वेंसी ट्यूनिंग हो जाती है, ट्यून्ड हो जाती है वहां ही अनुभव होता है। दोनों का मानसिक स्तर एक ही लेवल पर आ गया तो हमने उसके विषय में सोचा और उसका प्रत्युत्तर मिलता है और उस वक्त बेहद खुशी होती है। इसको कहा टेलीपैथिक कनेक्शन, जो इंसानों के साथ हम कई बार अनुभव करते हैं। आदि शंकराचार्य जी की बात याद आती है कि आदि शंकराचार्य जी जब बचपन में उन्हें संन्यास लेना था तो उन्होंने अपनी माँ से कहा मुझे संन्यास लेने दो। माँ का मोह बहुत था पुत्र के अंदर, इसलिए माँ ने मना कर दिया कि नहीं मैं तुझे संन्यास लेने नहीं दूंगी। ठीक है, जब तक माँ की स्वीकृति न हो तब तक वो संन्यास ले नहीं सकते थे। एक दिन उसकी माँ नदी पर कपड़ा धोने गई, वो भी साथ में गए और नदी में नहाने के लिए उतरे। थोड़ी देर में एक मगरमच्छ के मुंह के अंदर उसका पैर आ गया। उन्होंने जोर से आवाज लगाई अपनी माँ को कि देख माँ, तू मुझे संन्यास नहीं लेने दे रही है, अब यह मगरमच्छ मुझे खा जाएगा, फिर क्या करेगी। माँ का मोह तो बहुत था बच्चे के अंदर, उसने तुरंत भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु उसे बचा लो, मैं उसको संन्यास लेने दूंगी। सचमुच मगरमच्छ ने पैर छोड़ दिया, चला गया। आदि शंकराचार्य जी बाहर आए और अपनी माँ से कहा, देख अब तो तूने भगवान से वायदा कर लिया है, तू मुझे संन्यास लेने देंगी, अब उस वायदे को निभाओ। माँ ने कहा कि मैं तुझे संन्यास लेने दूंगी लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या शर्त है? तो उन्होंने कहा कि जब मैं मरूं तो तेरी कांध पर जाऊं, ये मेरी इच्छा है। आदि शंकराचार्य जी ने कहा, बस ठीक है, जब तेरी अंतिम घड़ी आए तुम मुझे याद करना, मैं कहां भी होऊंगा मैं पहुंच जाऊंगा और तेरी इच्छा पूरी करूंगा। और इस तरह से संन्यास लेकर के आदि शंकराचार्य जी तो निकल गए, प्रचार करते हुए काफी दूर चले गए। एक दिन काफी सालों के बाद वो अपने ध्यान में बैठे थे कि अचानक उन्हें महसूस हुआ कि उसकी माँ की अंतिम घड़ी आ गई है और वो उसको याद कर रही है। तुरंत ध्यान से उठे और चलने लगे अपने गांव की ओर। अपनी तपस्या की शक्ति से जैसे माँ के प्राण को अटका के रखे, जैसे ही वहां पहुंचे तो देखा सचमुच माँ अंतिम स्थिति में थी। वहां पहुंच करके माँ को आवाज लगाई, देखो माँ मैं पहुंच गया हूं। माँ ने आंखें खोली, देखा, तसल्ली हुई अंदर में और सहज प्राण तन से निकल गए। अब उस जमाने में न मोबाइल सर्विस थी, न टेलीफोन था, न टेलीग्राम था, न संचार का कोई भी माध्यम था, लेकिन ये कौन सी शक्ति थी? इसको कहते हैं टेलीपैथिक कनेक्शन, संकल्पों की शक्ति। और वो संकल्पों की शक्ति से अगर वो अपनी माँ के विचारों को कैच कर सके और पहुंच गए, उस जमाने के समय में वही विचारों की शक्ति से क्या हम परमात्मा को याद नहीं कर सकते हैं? अगर इंसान को याद करते हैं और उसका प्रत्युत्तर अनुभव होता है, सोचो भगवान को याद करो आप और उसका प्रत्युत्तर जब महसूस हो तो कितनी खुशी होगी। और ऐसा महसूस होगा जैसे मेरे मन की हर बात वो सुन रहा है। और उस समय इतना प्यार ईश्वर के प्रति भी जागृत होगा, क्योंकि अगर वो आपके मन की हर बात को सुन रहा है, उसका जवाब कोई ना कोई रूप से दे रहा है प्रैक्टिकल जीवन में, तो खुशी नहीं होगी, बेहद खुशी होगी। और उसके प्यार को अनुभव कर सकते हैं। मेडिटेशन माना ही ईश्वर के साथ का ये टेलीपैथिक कनेक्शन, ईश्वर के साथ का संबंध। लेकिन उसके लिए, ये करने के लिए, अनुभव प्राप्त करने के लिए, या तो मुझे अपनी मानसिकता को ऊपर उठाना होगा उसके स्तर तक, या तो उसको मेरे स्तर तक आना होगा। अब वो मेरे स्तर तक आए ये संभव नहीं है, इसीलिए मुझे ही अपने मानसिक स्तर को ऊपर उठाना होगा उसके स्तर तक, और तब ये मेंटल फ्रीक्वेंसी का ट्यूनिंग हो सकता है और ये अनुभव हम प्राप्त कर सकते हैं। अपने मानसिकता को ऊपर उठाने का मतलब क्या है कि देह अभिमान की स्थिति से ऊपर उठना और स्वयं को आत्म स्थिति में स्थित कर देना, तब उस परमात्मा के स्तर तक हम अपनी मानसिक आवृत्ति को ले आ सकते हैं और तब हम उस वाइब्रेशंस को महसूस कर सकते हैं, एक कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश कर सकते हैं और ये अनुभव जीवन का एक अनुभव हो जाता है। लेकिन उसके लिए भी कुछ आधार है, ऐसे ही नहीं होता है। इंसान जब याद करते हैं ना, तो वहां भी कुछ आधार है। सभी की याद हमें नहीं आती है। रास्ते चलते हमको हजारों व्यक्ति मिलते हैं, हर एक को हम थोड़ी याद करते, किसको याद करते। मुख्य रूप से चार आधार है इंसान को याद करने के। सबसे प्रथम आधार है परिचय। जहां जिसके साथ थोड़ा बहुत परिचय होगा उसी की याद हमें आएगी। परिचय ही नहीं तो याद कहां से आएगी, है ना? तो जहां परिचय है वहां याद सहज स्वाभाविक आती है। दूसरा आधार है संबंध। जहां थोड़ा बहुत संबंध होगा उसी की याद सहज आएगी। तीसरा आधार है स्नेह, प्यार। जहां जिसके साथ प्यार है, स्नेह है, उन स्नेहियों की याद सहज रूप से आने लगेगी। और चौथा आधार है प्राप्ति। जहां से कुछ मिलने वाला है, कुछ प्राप्त होने वाला है, उसकी याद सहज स्वाभाविक आएगी। तो इंसान को याद करने के ये चार आधार है और ये चार आधार पर चार प्रकार की यादें हैं। जहां सिर्फ परिचय होगा वहां याद कैसी होगी? वहां याद करना पड़ता है। जैसे मान लो के कोई फंक्शन हो हमारे घर में और उस फंक्शन में हमें हर परिचित व्यक्ति को बुलाना है, तो एक एक को याद करके एक लिस्ट तैयार करेंगे ताकि कोई भी छूट न जाए, और फिर एक एक को याद करके हम निमंत्रण भेजेंगे। तो मेहनत है। जहां सिर्फ परिचय है वहां याद करने की भी मेहनत है। लेकिन जहां संबंध होगा वहां याद कैसी होगी? वहां याद सताती है। आज मां का बच्चे के साथ एक संबंध है। मान लो कि बच्चा कहीं हॉस्टल में पढ़ रहा हो और वहां से खबर आ जाए कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, तो मां को क्या होगा? बच्चे की याद सताएगी। खाना बना रही होंगी, याद किसकी होगी? बच्चे की। वो क्या खा रहा होगा, क्या कर रहा होगा, कौन ध्यान रख रहा होगा, कितने विचार आते हैं। कभी कभी तो वो बच्चे की याद इतनी सताती है जो रात को नींद भी उड़ जाती है, रात भर नींद ही नहीं आती है। मान लो कि दूसरे दिन बच्चे का फोन भी आ जाए कि नहीं मम्मी मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, आप चिंता नहीं करना, तो भी मां क्या कहेगी? क्या कहेगी? आवाज ठीक नहीं लग रहा है। आखिर उसके मन में आता है मैं जाती हूं उसको देख के आती हूं, तब उसको शांति होती है ना? तो जहां संबंध है वहां याद भी सताने वाली है, सताती है, नींद उड़ा देती है। लेकिन जहां स्नेह है, प्यार है, वहां याद कैसी होती है? आज एक कन्या है या एक कुमार है, जब तक उन्हें पता नहीं कि उनका भविष्य साथी कौन है, तब तक मन भटकता है, कौन होगा, क्या होगा, कैसा होगा, अनेक विचार आते हैं। लेकिन जिस दिन परिचय हो जाए, संबंध जुड़ जाए, उसके बाद उसको सिखाना पड़ता कि अब तुम अपने भविष्य साथी को प्यार से याद करो, सिखाना पड़ता है ना? एकांत के पलों में बैठे होंगे और खो जाएंगे, कोई पास में से गुजर जाए और उनको पूछा जाए यहां से कोई गया तो क्या कहेंगे, मालूम नहीं, अरे आंखें खुल लिए यहां बैठे हैं, इतना कोलाहल हो रहा है, कितना बड़ा व्यक्ति यहां से गया कि नहीं गया पता नहीं चला, तो क्या कहते हैं, मेरा ध्यान नहीं था। तो ध्यान किसको कहते हैं और ध्यान कहां था? ध्यान माना स्नेह भरी संबंध में याद, जिस याद में व्यक्ति खो जाता है, लीन हो जाता है, उसको कहते हैं स्नेह भरी याद, समाने वाली याद, हो जाने वाली याद। और यहां जब कहते हैं कि खुली आंख रख करके मेडिटेशन करो, तो लोग क्या कहते हैं, अरे बहन जी खुली आंख से मेडिटेशन कैसे होगा, मन भटकता है, बहुत कुछ दिखाई देता है, ध्यान लगता ही नहीं है। और वहां व्यक्ति की याद में ध्यान लग जाता है, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होता है, इधर उधर कुछ भी दिखाई नहीं देता, आंखें खुली है, ट्रेन में बैठे हैं आंखें खुली है, किसी ये याद में खो गए हैं, ट्रेन चल रही हिल रहे हैं, बेचने वाले आवाज लगाते हुए आ रहे हैं जा रहे हैं, कोई बाजू में आके बैठ गया कुछ पूछ रहा है सुनाई नहीं दे रहा है। फिर वो व्यक्ति जब ऐसे ऐसे करता है तब ध्यान टूटता है, अरे भाई कहां हो, तो कहां है। तो व्यक्ति की याद में ध्यान लग जाता है और परमात्मा की याद में ध्यान नहीं लगता है ना? व्यक्ति की याद में ध्यान इतना लग जाता है, खुली आंख है, इतना आवाज हो रहा है, कुछ भी आपके ध्यान को तोड़ नहीं सकता है, कितना समय बीत गया पता नहीं चलता है। और भगवान की याद में बैठो और ध्यान नहीं लगता है, म्यूजिक बज रहा है, कमेंट्री चल रही है, वातावरण बनाया गया है, तो भी कहते ध्यान नहीं लगता है, कारण क्या है? शायद इतना प्यार नहीं है हमारा भगवान के साथ जितना इंसानों के साथ है, ये प्यार की कमी है, इसीलिए ध्यान नहीं लगता है। अगर प्यार हो और ध्यान न लगे ये कभी हो नहीं सकता है। तो आंख खुली है बंद है कोई फर्क नहीं पड़ता है, खुली है तो भी ध्यान लग जाता, अगर प्यार है तो कमी अगर है तो प्यार की कमी है। और चौथा, जहां प्राप्ति है वहां याद कैसी है? आज एक बिजनेसमैन को पता चले कि फलाने शहर से एक व्यक्ति आएगा, फलानी होटल में रुकने वाला है, लेकिन अगर उसके साथ बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट हो जाए तो माला माल हो जाएगा, लेकिन उसका पहुंचने का कोई ठिकाना नहीं है क्योंकि बाय रोड निकला है, कार से आ रहा है, ये रात को देर से भी पहुंच सकता है। अब व्यापारी को पता चला तो उसको नींद आएगी, सारी रात भी बैठना पड़े तो बैठेगा, कहेगा जाने दो कौन माला माल बनना चाहता है, मैं तो सो जाता हूं, कहेगा ऐसा, बार बार फोन लगाता रहेगा, वो आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया होटल वाले को, आखिर उसको मन में आता है वहीं जाके बैठ जाओ रिसेप्शन में, पहली अपॉइंटमेंट मैं ही ले लेता हूं। लेकिन एक बार माला माल हो गया उसके बाद कभी उसको याद करेगा, मतलब ही नहीं। तो जहां प्राप्ति है वहां याद भी कैसी है? मतलब भरी याद, स्वार्थ भरी याद। अब अगर अपने आप को देखें, ईश्वर के साथ हमारी याद कौन से प्रकार की है? करना पड़ता है, सताती है, हो जाते हैं, समा जाते हैं, या मतलब भरी है, स्वार्थ भरी है, क्या कहेंगे? हाँ, स्वार्थ भरी है। हाँ, बिजनेस डील करते हम भी भगवान के साथ, हे प्रभु मेरा हाँ इतना कार्य हो जाए तो दो नारियल चढ़ा देंगे, यानी ये काम का भाव दो नारियल है, अगर तुम कर दो तो तुम्हें मिल जाएगा, और भगवान ने नहीं किया तो नहीं मिलेगा, तो सौदेबाजी हो गई ना। तो प्यार तो नहीं है, एक बिजनेस डील है। तो जब बिजनेस डील है तब तक याद आएगी, बिजनेस डील पूरी हुई तो याद भी पूरी हो जाती है। इसीलिए भगवान में मन लगता नहीं है, इसलिए ये शिकायत बनी रहती है, क्या करे मन लगता नहीं है, भगवान में ध्यान लगता नहीं है। बाकी सब में ध्यान लगेगा, भगवान में नहीं लगेगा, क्योंकि इंसान की ईश्वर के साथ के याद का आधार क्या है? तीन प्रकार के आधार हैं। या तो स्वार्थ का आधार है, स्वार्थ भरी याद है, या तो भय है, भय कि आज मैंने अगर दो माला नहीं की तो पता नहीं भगवान श्राप न दे देवे, इसलिए दूसरे को तकलीफ दे करके भी दो माला मुझे रात को पूरी करनी ही है। अब भगवान श्राप क्यों देगा? एक डर, और डर को लेकर के ईश्वर को याद करना जो अयथार्थ है। भगवान को याद करो तो प्रेम से करो, डर से नहीं करो। इसीलिए कहा हुआ है डोंट बी गॉड फियरिंग चिल्ड्रन, बी गॉड लविंग चिल्ड्रन। भगवान को याद करो तो प्रेम से करो ना, डर से क्यों करें हम? या तो शिकायतें, क्या शिकायत करते हैं हम भगवान को? हे प्रभु, तूने मेरा भाग्य ही ऐसा क्यों बनाया? मेरे पड़ोसी का भाग्य तो इतना अच्छा बनाया, मेरे भाग्य लिखते समय तुम बिजी हो गया था क्या? हाँ, या तुझे कोई डिस्टर्बेंस हो गया था क्या? मेरे भाग्य लिखते समय ही तुमको ये कमी आ गई जो मेरा भाग्य तूने ऐसा बना दिया। बार बार भगवान को दोषी बनाते रहना, शिकायतें करते रहना कि तूने मेरा भाग्य ऐसा क्यों बनाया, कंप्लेंट्स ईश्वर के प्रति भी, से जो मिला है उसका एहसान नहीं है। लेकिन और संबंध सही क्यों नहीं है? क्योंकि परिचय ही नहीं है। अब परिचय तो मिल गया सवेरे के सत्र के अंदर, आत्मा का यथार्थ स्वरूप क्या है, परमात्मा का यथार्थ स्वरूप क्या है, अब मेरा उसके साथ कोई संबंध है या नहीं है? ईश्वर के साथ हमारा कोई संबंध है या नहीं है? कौन सा संबंध है? हाँ, पिता और पुत्र का। सचमुच कभी उसको पिता के रूप में याद किया? आज एक राजा का बेटा राजकुमार है, जब उसको पता है कि मेरा पिता राजा है और मैं उसका बेटा राजकुमार हूँ, तो उसका उठना बैठना बोलना चलना फिरना कैसा होता है? हाँ, राजसी, राजसी, उसको सिखाना नहीं पड़ता है, उसको पता है, ये स्मृति है कि मैं किसका बेटा हूँ, और इस स्मृति को लेकर के ही उसका उठना बैठना सब राजसी संस्कारों वाला होता है। आज हम अगर परमात्मा के बच्चे हैं, सुप्रीम अथॉरिटी के बच्चे हैं, ऊंचे से ऊंचे राजाओं के राजा के हम बच्चे हैं, तो हमारा उठना बैठना बोलना चलना फिरना व्यवहार करना कैसा है? ईश्वर के बच्चे कहलाने जैसा है? है? हाँ? तो है संबंध है? अब संबंध ही नहीं है तो स्नेह कहाँ से होगा? संबंध जहाँ हो वहाँ स्नेह जागृत हो जाता है अपने आप, और वैसे जीवन बनने लगती है अपने आप। आज हम कहते हैं कि हम भगवान के बच्चे, तुम मात पिता हम बालक तेरे, ये खाली मंदिरों में गाने तक, बाहर निकलने के बाद नहीं, वहाँ गा लिया और बाहर आ गए, उसके बाद हमारा कर्म व्यवहार कैसा होता है? भगवान के बच्चे कहलाने जैसा नहीं होता है। या तो कभी कभी हम भगवान के सामने भी क्या कहते हैं, हे प्रभु, आप तो इतने श्रेष्ठ, इतने महान, ऊंच ते ऊंच हो, और मैं आपका बच्चा, मैं तो नीच हूँ, पापी हूँ, कपटी हूँ, कामी हूँ, गंदा हूँ, बंदा हूँ, पता नहीं क्या क्या कहते हैं अपने लिए, और मंदिर में ये प्रार्थना किया, मैं नीच कल्प कामी पापी हूँ, और बाहर निकले और किसी ने कहा तू नीच है, पापी है, कपटी है, कामी है, क्रोधी है, हाँ तो क्या कहते हाँ? अरे अब भी तुम अपने मुख से गा के आया भगवान के सामने, तो क्या कहते? वो भगवान के सामने था, तेरे सामने नहीं। तो भगवान के सामने कुछ और दुनिया के सामने कुछ और, तो मेरा वास्तविक स्वरूप क्या है? जो मैं भगवान के सामने गा के आई वो है, या जो मैं दुनिया को दिखा रही हूँ वो है? सत्य क्या है? हमें खुद को ही मालूम नहीं है कि मेरा यथार्थ स्वरूप कौन सा है। सोचते हैं कि नहीं, भगवान के सामने तो निर्माणता दिखानी चाहिए, इसीलिए ऐसा गाते हैं। तो भगवान के सामने निर्माणता और दुनिया के सामने अभिमान, दोनों ही अज्ञान है। अगर निर्माणता दिखानी है तो दुनिया के सामने दिखाओ, और भगवान के सामने तो अधिकारी बनो। जैसे एक बच्चा होता है और एक दास होता है घर में। अब दास मालिक के पास जब आता है तो क्या कहता? निर्माणता भरा व्यवहार से कहता है कि साहब 100 रुपया चाहिए था, आप दे देंगे सीधा उसको 100 रुपया? नहीं, पूछेंगे क्यों चाहिए। अच्छा, उसने जो कारण बताया वो कार्य 50 रुपये में हो जाता है तो क्या कहेंगे? 50 रुपया ले जाओ, वैसे तेरा काम 50 में हो ही जाना चाहिए। नहीं, वो मैं फिर मेरे को बताना, मैं बात करूंगा उससे, है ना? और 50 रुपया उसको देकर रवाना करते। और वहीं अगर बच्चा आया और बच्चे ने कहा मुझे 10 रुपया चाहिए, और आपके पास 10 रुपया छुट्टा नहीं है, 100 की नोट है, तो क्या करेंगे? ना? दे देंगे। तो बच्चे ने मांगा 10 गुना मिला, दास ने मांगा आधा मिला। अब क्या बनना चाहते हो, दास बनना चाहिए या बच्चा बनना चाहिए? हा? दास बनेंगे तो सदा उदास रहेंगे। दास कभी सेटिस्फाई नहीं होता है, वो उदास ही रहता है। और बच्चा निश्चिंत, उसको कोई फिकर नहीं है, क्योंकि उसकी फिकर करने वाले उसके माता पिता बैठे हैं। इसी प्रकार अगर हम परमात्मा के बच्चे हैं तो हमें भी निश्चिंत ये मनस्थिति होनी चाहिए। दास वाली स्थिति हमारी है, उदासी, चिंता, दर्द, दुख, ये स्थिति है, तो हमारा संबंध है भगवान के साथ? संबंध ही गलत जोड़ दिया। अब संबंध गलत जोड़ेंगे तो प्राप्ति भी कैसी होगी? मांगने से आधा मिलेगा या कभी नहीं भी मिलेगा। लेकिन बच्चा अगर है तो उसको मांगने की भी जरूरत नहीं, उसको सहज प्राप्ति हो जाती है। तो ईश्वर के साथ हम कितने संबंध जोड़ सकते हैं? मनुष्य के अति निकट के 6 संबंध होते हैं, और ये 6 संबंध हम ईश्वर के साथ जोड़ सकते हैं। सबसे पहला संबंध है जो प्रहलाद ने जोड़ा उसके साथ, माता पिता के रूप में उसको याद किया, और वो भी माता पिता बन करके हर वक्त उसकी रक्षा करता रहा। दूसरा संबंध टीचर और स्टूडेंट का संबंध, जहां ज्ञान की प्राप्ति का अनुभव करना है। तीसरा संबंध है गुरु और शिष्य का संबंध, जहां शिष्य के मन के अंदर हमेशा गुरु की सेवा करने का एक भाव रहता है, और उसके आशीर्वाद का पात्र कैसे बनूं, यही भाव रहता है। चौथा संबंध जो अर्जुन ने उसके साथ जोड़ा, सखा या दोस्त का संबंध, मित्रता का संबंध। पांचवा संबंध जो मीराबाई ने उसके साथ जोड़ा, प्रियतम का संबंध। और छठा संबंध जो सती अनसुया ने उसके साथ जोड़ा, बच्चे रूप में उसको याद किया। तो ये 6 संबंध अति निकट के हैं, जिसको भगवान के साथ हम जोड़ सकते हैं, और जिस संबंध का अनुभव हम जीवन के अंदर प्राप्त कर सकते हैं, या समय प्रति समय एक एक संबंधों का रस क्या होता है उसका अनुभव कर सकते हैं। लेकिन कई बार कई लोग पूछते हैं कि हम प्रार्थना करते हैं ना भगवान से, क्या प्रार्थना और मेडिटेशन एक नहीं है? प्रार्थना और मेडिटेशन में बहुत बड़ा अंतर है। प्रार्थना माना मंदिर में गए, हाथ जोड़ा, जो हमें बोलना है बोल दिया, सर झुकाया, बाहर निकल आए, खड़े नहीं रहते हैं वहां सुनने के लिए वो भी मुझे कुछ कह रहा है। मेडिटेशन माना कुछ हम बात करें, फिर मन को शांत करो, सुनो वो भी हमें कुछ कह रहा है, और जब उसको सुनने का अभ्यास हो जाएगा तो इतनी अच्छी अच्छी बातें आपको ईश्वर से भी सुनने को प्राप्त होगी और इतना सुंदर एक संवाद अनुभव कर सकते हैं। एक कहानी याद आती है कि एक बार एक ग्वाल बाल था, गैया चराने वाला, सारी गायों को ले जाता था जंगल में, एक खुला मैदान आता था वहां छोड़ देता था, फिर एक झाड़ के नीचे बैठ जाता था। हर रोज अकेला ही होता था जंगल में, तो कभी क्या सोचता था, कभी क्या सोचता था। भगवान में उसकी बहुत आस्था थी, तो रोज भगवान से ही मन ही मन कुछ न कुछ बातें करता रहता था। एक दिन उसके मन के अंदर विचार आया कि जैसे मैंने ये गायों को छोड़ दिया, सब अपना अपना घास खा रही है, और अभी मैं शांति से ये झाड़ के नीचे बैठा हूँ, ऐसे ईश्वर ने भी हमें संसार में छोड़ दिया है, हर एक अपना अपना कर्म कर रहा है, घास खा रहा है, अभी वो भी मेरी तरह कहीं शांति से बैठा ही होगा। तो मन ही मन भगवान से बातें करने लगा कि हे प्रभु, तू भी कहीं अकेला बैठा होगा, मैं भी यहाँ अकेला बैठा हूँ। अब मुझे तो पता नहीं है तू कहाँ है, लेकिन तुझे तो पता है ना मैं यहाँ हूँ, क्यों नहीं थोड़ी देर के लिए आ जाओ, बैठेंगे, बातें करेंगे, गपशप करेंगे, टाइम पास करेंगे। अकेला अकेला बड़बड़ा रहा था। उतने में वहां से एक पंडित जी गुजरे। पंडित जी ने देखा ये लड़का अकेला अकेला कुछ बोल रहा है, पूछा ये लड़का किससे बात कर रहा है? कहा किसी से नहीं। अरे तू बड़बड़ा रहा है, किससे बात कर रहा है? कहा भगवान से बातें कर रहा था, किसी से नहीं कर रहा था। पंडित जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, अच्छा भगवान से क्या बातें कर रहा था, हम भी सुने। तो उसने अपने मन के भाव व्यक्त किए कि बस उसको कह रहा था तू भी कहीं अकेला बैठा होगा, मैं भी यहाँ अकेला हूँ, क्यों नहीं थोड़ी देर के लिए तुम आ जाओ तो बैठेंगे, बातें करेंगे, टाइम पास करेंगे, गपशप करेंगे, खेलेंगे। अकेला अकेला ऐसे बोल रहा था उसके साथ। पंडित जी को बड़ा गुस्सा आया, भगवान कौन है तुम जानता है? ऊंचे से ऊंची हस्ती है इस संसार की, वो कोई टाइम पास करने के लिए है क्या? हा? तो बड़ा गुस्सा किया उसके ऊपर कि ये कोई तरीका है, ये कोई सभ्यता है भगवान को याद करने की, भगवान से बातें करने की। बड़ा गुस्सा किया। अब ये लड़के ने कहा, पंडित जी मुझे तो ऐसा ही आता है, मैं तो रोज ऐसी ही बातें करता हूँ, रोज जंगल में आता हूँ, अकेला होता हूँ, ऐसी ही बातें करता हूँ उसके साथ। पंडित जी ने कहा ऐसी बातें नहीं करते हैं, पाप लगता है। तो लड़के ने कहा फिर कैसी बात करनी चाहिए, आप मुझे सिखाओ, फिर मैं ऐसी बातें करूंगा। पंडित जी ने कहा ठीक है बैठो, मैं तुम्हें सिखाता हूँ। अब वो अनपढ़ बालक, उसको संस्कृत क्या मालूम, और संस्कृत का एक श्लोक पक्का कराना शुरू किया। हम एक एक शब्द रटाते रटाते दो घंटे लगे। दो घंटे में वो लड़के ने सारा श्लोक पक्का कर लिया। पंडित जी ने कहा अब रोज ऐसे याद करना, ये सभ्यता है भगवान को याद करने की। लड़के ने कहा अब गलती नहीं होंगी, अब रोज ऐसे ही याद करूंगा, और उसने जो सिखाया वो बोलना शुरू कर दिया। पंडित जी वहां से चले, मंदिर जाकर भगवान से कहने लगे, हे प्रभु आज मैंने इतना अच्छा काम किया, एक अनपढ़ बालक को तेरे साथ बात करने की सभ्यता सिखाई, इतने में आकाशवाणी हुई, तुमने जो किया ना वो ठीक नहीं किया। कहा ठीक नहीं किया क्यों? कहा वो लड़का रोज जंगल में आता था, कभी क्या बात करता था, कभी क्या बात करता था, मैं रोज उसका इंतजार करता रहता था कि आज वो आकर मेरे से क्या बात करेगा, और कभी कभी तो ऐसी बात करता था जो मुझे भी हंसी आ जाती थी। लेकिन आज से तू जो रटा के आया है ना उसको, रोज वही रटा रटाया बोलता रहेगा जिसका भाव भी वो समझता नहीं है, और बोलता जाएगा जिसको सुनने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। कहीं हम भी ऐसा तो नहीं कर रहे हैं कि रोज वही रटी रटाई प्रार्थना बोले जा रहे हैं, ऐसा तो नहीं कर रहे हैं। अगर ऐसा ही कर रहे हैं तो भगवान को उसको सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। उसके बदले दिल से बातें करो ना, जो मन के अंदर आए वो बातें करो ना। जो भी बात करेंगे दिल से जो निकलेगा वो सुनने के लिए वो भी इंतजार करता रहेगा कि आज मेरा बेटा आकर मेरे से क्या बात करेगा, उसको भी खुशी होगी। इसीलिए तो कहा जाता है भक्ति में भगवान भावों का भूखा है, कोई अलंकारिक शब्द या श्लोकों का भूखा नहीं है वो। जो दिल से भाव निकले वो भाव उसके सामने रखो, यही सही सभ्यता है ना। कुछ भी बात कर सकते, ये भी नहीं कि हाँ जो ऐसी बात करना चाहिए वैसी बात करना चाहिए, ये भी नहीं है। एक बार एक 5 साल का बच्चा चर्च में पहुंच गया, पादरी जी हाथ जोड़ करके भगवान से प्रार्थना कर रहे थे, तो होठ फड़फड़ा रहे थे, अंदर ही अंदर कुछ बोल रहे थे। अब बच्चा तो नकल करने में होशियार होता है, वो भी बाजू में जाके खड़ा हो गया पादरी जी की तरह, उसने भी हाथ जोड़ा और होठ फड़फड़ाने लगा, कुछ बोल रहा था अंदर ही अंदर, लगातार बोल रहा था। पादरी जी बार बार उसके तरफ देखे, पता नहीं क्या बोल रहा लेकिन लगातार बोल रहा है। पादरी जी की जब प्रेयर पूरी हुई, बड़ा आश्चर्य हुआ, बच्चे की प्रेयर भी पूरी हो गई, उसने भी पूरा कर दिया। पादरी जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, इसने क्या कहा होगा भगवान से, बड़े जिज्ञासावश पूछा, बच्चे तूने भगवान से क्या बातें की? तो बच्चे ने कहा, आपने क्या कहा? पादरी जी ने कहा, मैं तो प्रेयर कर रहा था। तो बच्चे ने कहा, मैं भी प्रेयर ही कर रहा था। पादरी जी ने सोचा, इतनी लंबी प्रेयर कौन सी बोली होंगी। उसने पूछा, तूने कौन सी प्रेयर बोली? बच्चे ने पूछा, आपने कौन सी प्रेयर बोली? पादरी जी ने अपनी प्रेयर सुना दी। बच्चा मुस्कुराकर कहता है, मैं तो ABCD बोल रहा था। पादरी जी ने कहा, बच्चे भगवान के सामने ABCD थोड़ी बोलनी होती है। बच्चा बड़ा होशियार था, उसने कहा, ये तो मैं नहीं जानता हूँ ABCD बोलनी चाहिए या नहीं बोलनी चाहिए, लेकिन इतना जरूर जानता हूँ कि आपकी प्रेयर में भी वही 26 अक्षर ABCD के ही थे, मेरी प्रेयर में भी वही 26 अक्षर ABCD के ही थे। आपकी प्रेयर में ढंग से लगे हुए थे शब्द के रूप में, मैंने सीधा सीधा बोल दिया और उसको कह दिया, जैसे तुमको अच्छा लगे ना लगा लेना। भगवान को कौन प्यारा लगेगा, आप सोचो, है ना। इसलिए कहा कि भगवान के सामने आप ABCD भी बोल सकते, कुछ भी बोल सकते हैं, भगवान को वो प्यारा लगेगा जो दिल से आप निकालते हैं। इसलिए कहा कि दिल से जो बात निकली है ये है मेडिटेशन। मेडिटेशन कोई बड़ी चीज नहीं है। प्रार्थना माना व्यवस्थित शब्द या श्लोकों के रूप में बोलना, लेकिन मेडिटेशन माना दिल से बातें करना। कई लोग पूछते हैं कि मेडिटेशन में विचार शून्य होना होता है क्या? नहीं, विचार शून्य नहीं होते हैं। मेडिटेशन माना विचार करना, अच्छे अच्छे विचार करना, भगवान के साथ में अच्छी अच्छी बातें करना। विचार शून्य क्यों नहीं हो सकते हैं? क्योंकि मन का स्वभाव है सोचना। अगर उन मन के विचारों को हमने रोक लिया तो नुकसान होगा। जैसे एक पानी का बहाव है, एक नदी है बह रही है, अगर एक व्यक्ति आकर के सोचे इतना पानी वेस्ट जा रहा है, ये पानी को रोक लेना चाहिए, और एक दीवार खड़ी करने लगता है, पानी रुक जाएगा। लेकिन एक समय आएगा कि दीवार की शक्ति से पानी की शक्ति बढ़ जाएगी और दीवार तोड़ करके नुकसान कर देगा। लेकिन एक समझदार व्यक्ति वहां के डैम बनाता है, और डैम बना करके वहां हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन खड़ा करता है, और वो पावर स्टेशन से कितनी गांव को बिजली प्राप्त होती है, वहां इरिगेशन सिस्टम खड़ी करता है, कितने खेतों को पानी मिलने लगता है। तो जो पानी की शक्ति वेस्ट जा रही थी उसका संपूर्ण सदुपयोग हो गया। ठीक इसी प्रकार अगर मन के ये बहाव जो है, विचारों का जो बहाव है, अगर उसको रोकने का प्रयत्न करेंगे तो नुकसान करेगा, अंदर विस्फोट होगा। कई बार इसको रोकने के कारण लोग ये कहते हैं मेडिटेशन के बाद हमें सिरदर्द बहुत होता है। सिरदर्द क्यों होता है? क्योंकि वो शक्ति को रोका, और जितना वो शक्ति को सप्रेस करने का प्रयत्न करते हैं उतना वो कहीं ना कहीं दर्द उत्पन्न करेगा। इसलिए रोकना नहीं है, लेकिन वो विचारों की शक्ति को चैनलाइज करना है, दिशा देनी है, एक सकारात्मक दिशा, एक पॉजिटिव डायरेक्शन, एक श्रेष्ठ दिशा देना, जिससे जीवन का भी कल्याण होने लगता है। इसलिए विचार शून्य नहीं होना है, विचार चलाना है, अपने विचारों की शक्ति को एक श्रेष्ठ दिशा देना, इसी का नाम है मेडिटेशन। तीसरा, कई बार कई लोग पूछते हैं प्राणायाम और मेडिटेशन में क्या अंतर है। प्राणायाम शारीरिक स्वास्थ्य के लिए सही है, मेडिटेशन मन के और आत्मा के स्वास्थ्य के लिए सही है। दोनों का अपना अपना महत्व है। कई लोग पूछते हैं कि कोई मंत्र हमें मिल जाए तो फिर मन लगा रहे उसी में ही, ऐसा मंत्र है? मंत्र माना क्या? मंत्र शब्द से मंत्री शब्द निकला है। मंत्री माना सलाहकार, तो मंत्र माना सलाह, मन को दी हुई सलाह कि तुम ओम नमः शिवाय जप, है ना। ये मन को सलाह दे दी और मन जपता रहता, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः। इसको कहा मंत्र, जो हमारे मन को त्राण देता है, प्रोटेक्शन देता है, भटकने नहीं देता है, उसको कहा मंत्र। एक ऐसी सलाह है मन को। अब आज की दुनिया में अगर देखा जाए तो सलाह किसको पसंद आती है? हाँ, एक छोटे बच्चे को भी आप रोज सलाह देंगे ना, बेटे झूठ नहीं बोलना चाहिए, सच बोलना चाहिए, रोज सुबह सुबह उठ करके एक ही सलाह दो उसको, चार दिन वो सुन लेगा, पांचवें दिन कहेगा झूठ नहीं बोलना चाहिए, सच बोलना चाहिए, मुझे पता है, लेक्चर बंद करो, उसको लेक्चर लगता है। तो सलाह आज की दुनिया के अंदर छोटे बच्चे को भी पसंद नहीं आती है। अब हम भी रोज मन को उठ करके सलाह देंगे ओम नमः शिवाय जप, तो क्या करेगा मन? भी दुखी हो जाएगा कि नहीं? इसलिए मन भी चिड़चिड़ा हो जाता है, मन के अंदर फ्रस्ट्रेशन आना, यानी मन चिड़चिड़ा हो गया हमसे, हमसे ही खुद से ही चिड़चिड़ा हो गया है। आज ये जिह्वा है ना, ये जिह्वा को भी रोज वैरायटी टेस्ट का खाना चाहिए। अगर एक ही प्रकार की सब्जी और रोटी मिले कितना दिन खाएंगे? दो चार दिन खा लेंगे, दो चार दिन के बाद पूछेंगे और कुछ बनाना आता है या यही मिलेगा। मान लो कि बनाने वाले ने कह दिया ये आपकी फेवरेट डिश है, इसलिए हमने यही सीख लिया, अब जिंदगी भर तीनों टाइम आपको यही मिलेगा, तो क्या करेंगे? बहस करने से कोई मतलब तो है नहीं। अब उसने एडमिट कर लिया है कि जिंदगी भर यही खाना है, तो क्या करेंगे? खाया तो जाता नहीं है, इसलिए दूसरे दिन से बाहर जाना शुरू करेंगे। कभी होटल में खा के आ गए, कभी कोई मित्र संबंधी के यहाँ खा के आ गए, कभी कोई शादी पार्टी में खा के आ गए, कभी और कुछ नहीं मिला तो वो बेलपुरी पानीपुरी के स्टॉल से वहीं खड़े खड़े दो बेलपुरी पानीपुरी खा करके आ गए। घर में आकर कहेंगे हमें भूख नहीं है। अब जो बना रहा है वो खा रहा है, वो कितना दिन खाएगा? आकर वो भी तो ऊब जाएगा। फिर बाजार में जाकर एक रेसिपी बुक लाकर उसको देख देख करके उसमें से कुछ चीजें बनाई, बड़ी नाप से एक्यूरेट मसाला डाल के बनाया, और शाम को आप आए, आपको सर्व किया, खाने के बाद आप क्या कहेंगे? बहुत अच्छा है, ऐसा कहेंगे? नहीं, खाने के बाद यही कहेंगे इसमें कुछ कम है, बाहर जैसा नहीं है, कुछ मिर्ची कम है या नमक कम, कुछ तो कम है, वो बाहर जैसा टेस्ट नहीं है। अब वो कहेंगे सब एक्यूरेट जैसे लिखा हुआ था ना उसमें वैसा ही हमने बनाया, इतना साफ स्वच्छता से, हाइजेनिकली सब स्वच्छता से रख करके बनाया, फिर भी अच्छा नहीं लगा। कारण क्या है? कमी है तो क्या कमी है? होटल में वही पसीने एक्स्ट्रा होता है जो घर के भोजन में नहीं होता, इतनी कमी है, है ना? उतना ही टेस्ट का फर्क था, वही टेस्ट एक्स्ट्रा था उसमें जो इसमें नहीं है। कहने का भावार्थ यह है कि अगर शुरू दिन से यही मिलता था तो वो बाहर का अच्छा नहीं लगता था, लेकिन अब बाहर का टेस्ट जिह्वा पर चढ़ गया तो ये अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक इसी प्रकार मन का भोजन है चिंतन, उसको भी रोज एक ही प्रकार का चिंतन दिया जाए तो क्या करेगा? ओम नमः शिवाय जपो, दो चार दस बारह पंद्रह दिन जप लिया, महीना भर दो महीना जप लिया, दो महीने के बाद मन भी आत्मा से पूछता है, हे आत्मा और कुछ मिलेगा या यही है? अब आत्मा ने कह दिया ये गुरु मंत्र है, इसलिए जिंदगी भर यही तुम्हें बोलना है, तीनों टाइम जब समय मिले तब। अब मन ने भी समझ लिया कि आत्मा के साथ बहस करने का कोई मतलब नहीं है, तो मन भी क्या करता है, मन मुख से कहता है, हे मुख तू जपता रहे, मैं थोड़ा बाहर घूम के आता। इसलिए मुख बोलता जाता है बेचारा ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, लेकिन मन देखो तो बाहर चक्कर काट रहा है, कौन आया कौन गया, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, क्या हाँ क्या बातें चल रही है, ध्यान उधर है तो ध्यान कहाँ है? मंत्र जाप में ध्यान नहीं लगता है क्योंकि ऊब गया। ह्यूमन माइंड इज हाइपर क्रिएटिव, उसको हर रोज नए नए विचार चाहिए। अगर उसको भी एक मैकेनिकल प्रोसेस में लगा देंगे, एक मोनोटोनस प्रोसेस में लगा देंगे तो वो ऊब जाता है, और जब ऊब जाता है तो वो भटकना शुरू करता है, उसको भी मन नहीं लगता है, मजा नहीं आता है। लेकिन हर रोज अगर अपने मन को अच्छे अच्छे विचार दो तो बाहर जाएगा। मन को हमेशा आध्यात्मिक बातें, अच्छे अच्छे विचार अच्छा लगता है, और अगर रोज उसको अच्छे अच्छे आध्यात्मिक विचार दो तो ध्यान लग जाएगा, ये शिकायत बंद हो जाएगी कि मेरा मन परमात्मा में नहीं लगता है, मन लग जाएगा। क्योंकि आध्यात्मिक बातें ही ऐसी है जो मन को लगा देगा, कहीं उठने का मन नहीं करेगा। कहने का भावार्थ ये है कि मन को भी रोज सुंदर सुंदर विचार दो, अच्छे अच्छे विचार दो, ज्ञान युक्त विचार दो। इसीलिए भगवान ने गीता में भी कहा, मुझे ज्ञानी तू आत्मा योगी तू आत्मा पसंद है। मुझे कौन पसंद है? जो ज्ञान का चिंतन करता है, ज्ञानी तू आत्मा। और पांचवी बात, कई बार कई लोग क्या कहते हैं, मेडिटेशन माना भगवान की कल्पना करना। क्या कल्पना और मेडिटेशन में क्या अंतर है? बहुत बड़ा अंतर है। मेडिटेशन में हम कल्पना नहीं करते हैं। आज मैं अगर आपको कहूं आप अपने शारीरिक माता पिता को याद करो, और आप अपने शारीरिक माता पिता को याद कर रहे हैं, और अचानक कोई आ जाए और पूछे कहां खोए हुए हो क्या कर रहे हो, तो आप कहेंगे अरे मेरे माता पिता की याद मुझे आ गई, यही कहेंगे ना? ये तो नहीं कहेंगे मैं अपने माता पिता की कल्पना कर रहा था। कल्पना किसको कहते हैं? जिसका अस्तित्व है ही नहीं और उसके विषय में सोचते हैं उसको कहते हैं कल्पना। लेकिन जिसका अस्तित्व है या था और उसके विषय में अगर सोचते हैं तो ये कल्पना नहीं हुई, ये याद हुई, ये मेडिटेशन हुआ। तो मेडिटेशन में हम ईश्वर के को प्यार से याद करते हैं, संबंधों के आधार पर याद करते हैं, तो उसको कल्पना नहीं कहते, उसको विजुअलाइजेशन कहते हैं, कि उसको विजुअलाइज करते हैं, उस दिव्य स्वरूप को सामने ले आते हैं और उसमें अपने ध्यान को एकाग्र करते हैं।